लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी की चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम प्रकाशित किया। श्रोताओं, एवेंजेली गौडियम का तीसरा अध्याय सुसमाचार की घोषणा का जिक्र करता है। ख्रिस्तियों के रूप में हम में से प्रत्येक जन अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करने हेतु बुलाए गए हैं। अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में हमने कहा कि धर्म प्रचारक के मुख में यह उद्घोषणा सदैव गूंजित होनी चाहिए, यीशु ख्रिस्त तुम्हें प्रेम करते हैं, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपना जीवन दिया और अब वे सदैव तुम्हारी बगल में रहते हैं, जिससे वे तुम्हारे रोज दिन के जीवन को आलोकित करते हुए तुम्हें शक्ति और तुम्हें स्वतंत्र करें। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि धर्म शिक्षा में सुसमाचार प्रचार अपने में एक ठोस प्रशिक्षण की राह तैयार करता है। प्रारंभिक सुसमाचार की घोषणा के अलावे ऐसी कोई भी बात नहीं जो अपने में अधिक ठोस, गहरी, निश्चित, अर्थपूर्ण और विवेक से भरी हो। सभी ख्रिस्तीय प्रशिक्षण में हम अपने को ख्रिस्त के सुसमाचार में गहराई से प्रवेश करते हुए पाते हैं, जो निरंतर धर्म शिक्षा के कार्यों में चिंतन के अनुरूप आलोकित होता है, जिसके द्वारा हम सारी बातों की विशिष्टता को गहराई से समझने में सक्षम होते हैं जो धर्म शिक्षा में हमारे लिए प्रस्तुत की जाती है। यह वह संदेश है जिसमें वह योग्यता है जो अनंत चाह के बारे में उत्तर देने को सक्षम होती है, जो मानव हृदय में निवास करती है। सुसमाचार का केंद्रीय संदेश हमें उन बिंदुओं पर जोर देने को निमंत्रण देता है जिनकी जरूरत आज हमें सबसे अधिक है। यह हमें ईश्वर के मुक्तिदायी प्रेम को घोषित करने हेतु अग्रसर करता है, जो हमारे लिए किसी भी मौलिक और धार्मिक कार्यों के पहले आता है। यह सच्चाई को थोपने की कोशिश करना नहीं, अपितु स्वतंत्रता का आह्वान करना है। इसे खुशी, प्रोत्साहन, उत्साह और एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन में होने की जरूरत है, जो सुसमाचार प्रचार को कुछ सिद्धांतों तक सीमित नहीं करेगा, जो कभी कभी ईश शास्त्र की अपेक्षा अपने में अधिक दार्शनिक लगते हैं। ये सारी चीजें सुसमाचार प्रचार के निश्चित मनोभावों की मांग करती हैं, जो उसमें संदेश के संबंध में खुलापन लाती है, उसमें सुगमता, वार्ता के लिए तैयार, धैर्यवान, एक उत्साह और गैर आलोचक बनाता है। श्रोताओं, धर्म शिक्षा के संबंध में एक दूसरा पहलू रहस्यात्मक दीक्षा है, जो फिलहाल की सदियों में ही प्रचलित हुई है। यह मुख्यतः दो बातों की चर्चा करती है, पूरे समुदाय से जुड़े रहते हुए विकासशील प्रशिक्षण और ख्रिस्तीय दीक्षांत धर्म विधिक संकेतों की नए सिरे से प्रशंसा करना। नई नियमावली और कार्यक्रमों ने अभी तक रहस्यमय नवीनीकरण की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया है, जो प्रत्येक शैक्षणिक समुदाय के आत्म परीक्षण के आधार पर अलग रूपों को अपने में ग्रहण करेगा। धर्म शिक्षा उस शब्द की एक उद्घोषणा है जो सदैव शब्द में केंद्रित है। यद्यपि यह हम सबों से एक सुयोग्य वातावरण और एक आकर्षक प्रस्तुति की मांग करता है, जहां हम सुंदर निशानियों के उपयोग को देखते हैं। विकास की एक व्यापक प्रक्रिया में सम्मिलन और मानव के हर आयाम का एकीकरण, जहां वह एक समुदाय में सुनने और प्रत्युत्तर में अपनी यात्रा करता है। श्रोताओ, धर्म शिक्षा का हर प्रारूप हमें सुंदरता के मार्ग में अग्रसर होने को मदद करता है। ख्रिस्त को घोषित करने का अर्थ इस बात को दिखलाना है कि उनमें विश्वास करना और उनका अनुसरण करना केवल कुछ सही और सच्ची बातों का अनुसरण करना नहीं, बल्कि यह अपने में एक सुंदरता है जो हमारे जीवन को आश्चर्य, नवीनता और गहरी खुशी से भर देता है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हों। इस तरह हर सुंदरता की अभिव्यक्ति को हम इस रूप में स्वीकार कर सकते हैं कि यह मार्ग हमें यीशु ख्रिस्त से मिलन हेतु आगे ले चलता है। इसका संबंध सौंदर्य संबंधी सापेक्षवाद को बढ़ावा देने से नहीं है, जो सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता के बीच अभिभाज्य बंधन को कम करता हो, बल्कि सुंदरता के लिए एक नया सम्मान तैयार करता है जो मानव हृदय के स्पर्श का एक साधन बनता, जिसके फलस्वरूप हम पुनर्जीवित ख्रीस्त की सच्चाई और अच्छाई को अपने भीतर प्रसारित होने देते हैं। संत अगुस्टिन इसके संबंध में कहते हैं कि यद्यपि हम केवल उस चीज से प्रेम करते हैं जो सुंदर है, शरीरधारी पुत्र से जो अनंत सुंदरता का प्रकटीकरण है, तो यह हमारे लिए अतुल्य प्रेम में होता और प्रेम की डोर से हमें अपनी ओर खींचता है। अतः सुंदरता के मार्ग में विकास करने का एक प्रशिक्षण हमसे इस बात की मांग करती है कि हम अपने विश्वास को प्रसारित करें। हर विशेष कलीसिया को चाहिए कि वह सुसमाचार को प्रसारित करने के संबंध में कला के उपयोग को प्रोत्साहित करे, अतीत की समृद्धि पर अपने को आधारित करने के साथ साथ समकालीन अभिव्यक्तियों की विस्तृत विविधता पर भी चिंतन करे, ताकि विश्वास को नई दृष्टांतों की भाषा में प्रसारित किया जा सके। हमें चाहिए कि हम साहसपूर्वक नई निशानियों और नए चिन्हों की खोज करें, नया शरीर जो शब्द को अपने में धारण करते हुए उसे संचारित करता हो, और दूसरी तरह की सुंदरताओं के रूपों को जो दूसरी संस्कृतियों में मूल्यवान हो, यहाँ तक कि सौंदर्य के उन अपरंपरागत तरीकों में भी जो सुसमाचार प्रचारकों के लिए बहुधा कम अर्थपूर्ण लगते हैं, यद्यपि यह दूसरों के लिए विशेष रूप से आकर्षक साबित होते हैं। श्रोताओ, धर्म शिक्षा में नैतिक तत्व के संबंध में जो सुसमाचारी जीवन के संबंध में निष्ठा की वृद्धि को बढ़ाता है, आकर्षक और एक विवेकपूर्ण जीवन का आदर्श आत्म संतुष्टि और समृद्धि पर बारंबार जोर देना अपने में सहायक है। उस सकारात्मक संदेश के प्रकाश में जीवन को खतरे में डालने वाली बुराइयों को अपने से दूर करते हुए हम जीवन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। गंभीर भविष्यवाणियों में विशेषज्ञों, कठोर न्यायाधीश होने के बजाय जो हर खतरे और विचलन को जड़ से खत्म करने पर तुले होते हैं, हमें चाहिए कि हम चुनौतीपूर्ण प्रस्तावों को हर्षित संदेश वाहक स्वरूप अपने को पेश करें। अच्छाई और सुंदरता के संरक्षक स्वरूप जो कि सुसमाचार के प्रति एक निष्ठामय जीवन की चमक को प्रस्तुत करते हैं। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गॉडियम पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
शांति का। वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों को याद दिलाया है कि वे संध्या वंदना करने और दैनिक सुसमाचार पाठ करने पर ध्यान दें। उन्होंने 28 मार्च को ट्वीट के माध्यम से कहा, चालीसा काल की इस अवधि में यह अच्छा नहीं है कि हम अपने कमरे की बत्ती बुझाने से पहले अपने आप को ईश्वर के प्रकाश के सामने न रखें। आइए हम सुसमाचार का पाठ करने के द्वारा प्रभु को हमारे हृदय को पुनः जागृत करने दें और हम अपने आप को ईश्वचन से विस्मित होने दें जो हमारे कदमों को आलोकित करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने तुर्की के भूकंप पीड़ितों के लिए 10,000 दवाइयां भेजी हैं। वैटिकन सूत्रों के अनुसार दवाइयां जो कल और आज विमानों द्वारा तुर्की पहुंच रही हैं, फरवरी में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित तुर्की के लोगों के लिए पोप फ्रांसिस की ओर से भेजी गई हैं। पोप फ्रांसिस की ओर से प्रेरितिक दानदाता विभाग तुर्की के लिए वैटिकन के राजदूत आवास के सहयोग से दवाइयां भेज रहा है। जर्मन कार्डिनल कार्ल जोसेफ रॉबर हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन रविवार को हुआ। वे 88 वर्ष के थे। उन्होंने परमधाम पीठ की ओर से लंबे समय के लिए राजनयिक सेवाएं प्रदान की। कार्डिनल रॉबर का जन्म 11 अप्रैल 1934 ईस्वी को जर्मनी के बम्बार्गधम प्रांत में हुआ था। उनका पुरोहित अभिषेक 28 फरवरी 1959 को मेंज महायज्ञघर में हुआ था। 1 अक्टूबर 1959 को उन्होंने परमधम पीठ की राजनयिक सेवा में प्रवेश किया था तथा 1977 तक राज्य सचिवालय में कार्य किया। 6 जनवरी 1983 को उनका धर्मध्यक्ष अभिषेक हुआ। युगांडा में अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए जनवरी 1990 को वे परमधम पीठ कलीसिया अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 16 मार्च 2003 को वे स्विट्जरलैंड एवं लिंस्टेनस्टीन के प्रेरितिक राजदूत बने। उसके बाद 25 अप्रैल 1997 को वे हंगरी और मालदोवा के प्रेरितिक राजदूत का कार्यभार संभाला। 22 फरवरी 2003 को वे बेल्जियम और लक्समबर्ग के प्रेरितिक राजदूत नियुक्त हुए थे। संत पापा फ्रांसिस ने 14 फरवरी 2015 को उन्हें कार्डिनल घोषित किया था। कार्डिनल कार्ल जोसेफ रॉबर के निधन के साथ ही कार्डिनलों की कुल संख्या 222 हो गई है, जिनमें से 123 कार्डिनल पोप के चुनाव हेतु वोट दे सकते हैं, जबकि 99 कार्डिनल पोप के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। वैटिकन संचार विभाग पोप फ्रांसिस के शांति एवं आशा के संदेश को स्पाय सैटल्स या आशा के संरक्षक सैटेलाइट को ग्रह पथ में लॉन्च करने के लिए इताली अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि हमारी परेशान दुनिया के लिए पोप फ्रांसिस की आशा एवं शांति का संदेश अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। स्पाय सैटल्स या आशा का संरक्षक उपग्रह 27 मार्च 2020 के संत पापा फ्रांसिस के स्टासियो ऑर्बिस या विश्व स्टेशन रिकॉर्ड को अपने साथ लेगा, जिसको कोविड-19 महामारी के अत्यधिक प्रभाव के दौरान पृथ्वी के चारों ओर कक्ष में आयोजित किया गया था। स्पेसैट 3 यूक्यूब साइट को 10 जून 2023 को स्पेसएक्स फल्कन 9 रॉकेट पर सवार अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में वैटनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया जाएगा, जो इसे 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। बयान में कहा गया है कि यह पहल लोगों को इसमें शामिल होने और आशा के सुसमाचार के संदेश को अपने जीवन में जीने का निमंत्रण देती है। उधर इसराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट की बर्खास्तगी पर आक्रोश जताते हुए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने विवादास्पद न्यायपालिका कार्यपलट योजना को रोकने के लिए सरकार से आह्वान करने के बाद अपने रक्षा मंत्री योब गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। जब इसराइल में अशांति जारी है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने की सरकार की योजना का विरोध करने के लिए हजारों नागरिक फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। नेतन्याहू जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, उनका कहना है कि कायापलट की आवश्यकता अत्यधिक सक्रिय सुप्रीम कोर्ट पर नियंत्रण करने के लिए है। एशिया की कलीसिया ने सीनेट के महाद्वीपीय स्तर पर लोगों की आवाज एवं उनके प्रत्युत्तर के अंतिम दस्तावेज को प्रकाशित किया है। एशिया का धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ ने 16 मार्च को धर्मसभा पर एशिया महाद्वीपीय सभा का अंतिम दस्तावेज जारी किया। दस्तावेज 17 धर्माध्यक्ष सम्मेलनों और पूर्वी कलीसिया के 2 धर्मसभाओं की प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण का फल है। साथ ही 24 से 26 फरवरी को महाद्वीपीय सभा में धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों के विचार विमर्श का परिणाम है। 4.6 बिलियन लोगों और दुनिया के कई अरबपतियों का घर एशिया, लगभग 150 मिलियन या कुल आबादी का लगभग 3.31% कार्तिक आबादी की मेजबानी करता है। अंतिम दस्तावेज में कहा गया है कि हालांकि यह अल्पसंख्यक है, कार्तिक कलीसिया शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक कल्याण और समाज में गरीबी एवं हाशिए पर जीवन यापन करने वाले समूहों तक पहुंचने के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देता है। एशिया में सिनोडल प्रक्रिया ईश्वर की कृपा से ऐसे समय में संपन्न हुआ जब एशियाई कार्तिक धर्म अध्यक्ष संघ ने अपना 50वां सम्मेलन आयोजित किया था, जिसको अक्टूबर 2022 को संपन्न किया गया। दस्तावेज में गौर किया गया है कि कुछ देश जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से कई लोगों को शामिल करने में सक्षम रहे, जबकि अन्य केवल कुछ लोगों के छोटे समूहों को इकट्ठा कर पाए। इसमें योगदान करने वाली एक सीमा यह थी कि महाद्वीपीय चरण के लिए दस्तावेज को एशिया में बोली जाने वाली कई स्थानीय भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सका। महाद्वीपीय चरण के द्वारा पहली गूंज के रूप में कलीसिया के प्रति गहरे प्रेम को खुशी, उदासी, दुर्बलता और चोट जैसी विभिन्न भावनाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया। सिनोडल प्रक्रिया ने एशिया के स्थानीय कलीसिया को अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि एवं समृद्ध संस्कृति के बारे जागरूकता प्रदान की। साथ ही इस बात को भी सामने रखा कि एशिया में अनेक ख्रिस्ते अपने विश्वास के लिए कई प्रकार के भय में जीते हैं, जिसके लिए उन्हें कष्ट भी सहना पड़ता है, जो एक नए प्रकार की शहादत है। एशिया के कलीसिया में कई प्रकार के घाव हैं, जैसे वित्त अधिकार क्षेत्र, विवेक अधिकार और सेक्स संबंधित दुर्व्यवहार, शासन एवं निर्णय लेने में महिलाओं के पर्याप्त समावेश की कमी, समझ की कमी और लोगों के कुछ समूहों को पर्याप्त प्रेरितिक देखभाल प्रदान करने में कलीसिया की विफलता, साथ ही व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद, भौतिकतावाद जैसी विचारधाराओं की घुसपैठ और दमनकारी शासन द्वारा कलीसिया की आवाज को शांत करने की कोशिश की जाती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।